ಪರಿಭವಗ್ನಮಭೀಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ಶಿವವಿರಿಂಚಿನುತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಂ ಪ್ರಣತಪಾಲಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಂ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ.
आज आप लोगों को लड़ाई की बात सुनाता हूं। एक लड़ाई वो होती है जो नरकों में ले जाती है, वह तो घर घर में हो ही रही है, परंतु एक ऐसी लड़ाई होती है जिससे मुक्ति हो जाती है। एक नेक नामी किसान थे, केवल अपने हक का खाने वाले थे, दूसरे के हक को हराम समझते थे। एक दिन वे किसान खेत जोत रहे थे, भूमि से धन का एक पात्र निकला, उसमें बहुत रत्न थे, मोहरें थी, क्या बताएं, लाखों रुपए का द्रव्य था। वे जमींदार के पास लौटकर आए और कहा, जमींदार साहब, आपकी जमीन में से ये धन का चरू निकला है। जमींदार ने कहा, हमारी जमीन नहीं है, हमने तो रुपया ले लिए, ये तो अब जमीन तुम्हारी हो गई। किसान ने कहा, हम तो खेती करते हैं, धान आदि होता है वो हमारा है, खेत के नीचे की चीज है वो हमारी कैसे हो सकती है। उसने कहा, नहीं, ये धन मेरा नहीं है। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। राजा के न्यायालय के पास गए, राजा के यहां न्याय कराने के लिए गए। उल्टा झगड़ा है, विचित्र झगड़ा है। एक कहता है ये धन इसका है, एक कहता है नहीं धन इसका है। राजा ने कहा कि भाई, ऐसा झगड़ा तो आज तक हमारे पास आया ही नहीं, आज के जैसे समय में तो सरकार कह सकती है न तुम्हारा है न इसका, ये तो हमारा है, क्योंकि तुमने इसका बता दिया ये स्वीकार नहीं करता, तुमने इसका बता दिया ये भी स्वीकार नहीं करता, तो हम मालिक हैं। परंतु ये तो कलयुग है, उस समय सतयुग था। किसान से पूछा गया कि तुम लोगों में आपस में विवाह का संबंध चलता है क्या, माने तुमने जो जमीन बेचने वाला और जमीन खरीदने वाला, तुम दोनों ही किसान हो, तुम्हारे आपस में विवाह संबंध हो सकता है क्या, लड़के लड़की दे ले सकते हो क्या। कहा, हाँ, हमारे कोई संतान है क्या। हाँ लड़की है। तुम्हारे कोई संतान है क्या। हाँ लड़की है। जमींदार से पूछा गया कि तुम्हारे। हाँ है। तुम्हारे क्या है भाई। मेरा लड़का है। तो राजा ने कहा, देखो भाई, न्याय यही कहता है कि तुम विवाह कराओ, तुम अपने लड़की का इसके लड़के के साथ शादी करा दो, और जो धन आए वो धन जमींदार को दे दो, दहेज में दे दो। जमींदार चिल्लाया, ये काहे का न्याय है, मैं कैसे धन लूंगा, ये फोकट धन मैं नहीं लूंगा। राजा ने कहा, जमींदार जी, इतने नाराज क्यों होते हो, तुमको धन थोड़े ही दिया है, ये तो तुम्हारे जो बहू आ रही है उसका धन है, लड़की को दिया जा रहा है। किसान ने कहा, मेरी लड़की को मैं वह धन दूं तो वह धन हमारा मानकर ही तो देना पड़ेगा, पहले इस चरू वाले धन को मैं मेरा मानूं, मेरा मान करके और फिर मैं लड़के वाले को देऊं, तो ये तो मेरा मानना हो गया, ये मेरा ही तो नहीं माना जा रहा है। राजा ने कहा कि तुम्हारी लड़की कहाँ रह रही है, अब तो वह जा ही रही है, अब तो तुम्हारी लड़की कहाँ है, अब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी लड़की तो जब तक तुम्हारे पास थी तब थी, अब तो जब शादी हो रही, तुम्हारा लड़की से संबंध ही टूट रहा है, तब फिर ये धन देने में तुम्हें क्या आपत्ति है। दोनों राजी हो गए। ऐसी लड़ाई होती है वो मुक्ति करने वाली होती है। हम लोग चाहते हैं कि आपस में ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। ये आजकल जो आपस में लड़ाई होती है स्वार्थ को लेकर, ये नरक में ले जाने वाली है। घर में स्त्रियां रोटी बनाती हैं, एक कहती है कि तुम बनाओ, दूसरी कहती है नहीं मेरे गर्मी बहुत पड़ती है तुम ही बनाओ। ये जो लड़ाई होती है घातक है, ये भी नरक में ले जाने वाली है। पांडवों की कथा आती है। एक चक्रा नगरी में एक राक्षस रहता था और एक दिन रोज मनुष्य का भक्षण करता था। पांडव वनवास के समय जिस घर में रुके थे वो ब्राह्मण का घर था। अब वहां बारी आई, घर का स्वामी ब्राह्मण कहता है कि मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी कहती है मैं जाऊंगी, ये लड़ाई कल्याण करने वाली है। वे इस प्रकार लड़ते रहे, आपस में होती रही बातें, जिद्द जेहाद हुई। माता कुंती ने सुन लिया, कहा कि तुम दोनों ही नहीं जाओगे, मेरा बेटा जाएगा। कि ये बात कैसे करते हो, नहीं मैं मेरे बेटे को भेजूंगी। भीमसेन को भेजा, भीमसेन गए और भीमसेन ने उसको मार दिया। और जब इनाम मिलने का वक्त आया कि किसने यहां मारा, इनाम मिले, उसने चुपचाप रवाना हो गया। यदि ये लड़ाई होती है कि तू जा मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं, तू जा मैं जिंदा रहना चाहती हूं, तो दोनों ही मारे जाते हैं। ऐसी लड़ाई लड़ो कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जहां बलिदान का काम पड़े वहां ये कहता कि मैं जाता हूं, दूसरा कहता मैं जाता हूं, तो उद्धार दोनों का हो जाएगा। देहरादून में एक लाला बलदेव साहिब जी जमींदार थे, उनकी हमने बात सुनी। वे दो भाई थे, उनके 25 मोजे थे, मोजा पैर में पैर नाला, 25 मोजे थे। अब अलग अलग होने लगे तो 12-12 तो बांट लिया, एक मोजा रह गया। बड़ा भाई छोटे को कहता है कि ये मोजा तुम ले लो, छोटा कहता है कि नहीं आप ले लो। अब एक मोजे का बंटवारा तो हो नहीं सकता है, वह कहता है तुम ले लो, दूसरा कहता है तुम ले लो। पंचायती करने वाले हैरान हो गए। वहां पर एक मारवाड़ी आदमी आया, कहा कि छोड़ो हम पंचायती करते हैं। छोटे भाई ने कहा कि पंचायत मुझे स्वीकार है, किंतु एक गांव अधिक बड़े भाई को, एक गांव ये 25 मोजे कोई पैर नाला मोजा को नहीं, और ही कहीं है खेत है गई, खेत ने मोजो बोले गई हो मान गए था। तो पंचायत मुझे स्वीकार है किंतु एक गांव अधिक बड़े भाई को दिलाना होगा। उस मारवाड़ी ने कहा दे देंगे। बड़े भाई से मिला, बड़े भाई ने कहा कि आप पंचायत ही करोगे क्या, पंचायत ही तो करो, लेकिन वो मेरे से छोटा है, उसको एक गांव ज्यादा मिलना चाहिए। छोटे भाई से कहा मारवाड़ी ने, ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, एक गांव तेरे बड़े भाई को दिला दूंगा। बड़े भाई से कहा कि एक बार मैं तुम्हें दिला दूंगा, फिर छोटे भाई को दिला दूंगा। एक मोजा बड़े भाई को अधिक दिला दिया, दोनों भाई अलग अलग हो गए, सब लोग राजी हो गए। अलग होने के बाद बड़ा भाई बोला, देखो हमने आपकी बात मान ली, अब मेरा काम होना चाहिए। पंचायत करने वाले ने कहा कि छोटे भाई को बुलाना, फिर उससे कहना तुम छोटे हो, मैं दो गांव तुम्हें देना चाहता हूं। ऐसा ही किया, छोटे भाई को बुलाया और कहा अमुक अमुक दो गांव तुम्हारे लड़के के नाम से करूंगा। पंच ने कहा पंचायत तो समाप्त हो गई, अब तुम्हारी खुशी है जैसे तुम्हारा लड़का वैसे इनका लड़का। तब उसने वो मोजा ले लिया। ऐसे जो स्वार्थ के त्याग की लड़ाई होती है, वो लड़ाई अपने को सीखनी चाहिए। स्वार्थ के कारण से तो सभी लड़ते हैं, स्वार्थ की लड़ाई के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। स्वार्थ तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से भरा पड़ा है। ये जो मनुष्य है, ये ऐसी लड़ाई तो मनुष्य ही लड़ सकता है, ऐसी लड़ाई अब आप कहां लड़ोगे। इस लड़ाई का परिणाम बहुत अच्छा होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। नहीं तो भाई स्वार्थ के चक्कर में आकर संसार में जन्मते मरते रहोगे। एक भाई आसाम गया, आसाम में उसका मित्र रहता था, उसके पास गया और अपने मित्र से कहा कि भाई क्या बताएं, देश में तो अकाल पड़ गया इसलिए यहां आया हूं। मित्र ने कहा ठीक ठहरो। अपनी स्त्री से कहा मेरा मित्र आया है। स्त्री ने मुंह बिचका के कहा बासे में भेज दो, आपके तो मित्र आते रहते हैं। खीर खान का भोजन बनाया और इनको खिला दो। तो उसने ऊपर की मड़ाई उतार करके अलग रख दी और उसको बुलाया, भोजन करा दिया और पीछे स्वयं किया और मड़ाई खाई। उधर से वो मित्र था, वो लघु शंका करने गया था तो पीछे आके देखा कि ये तो मड़ाई खा रहे हैं। रात को दुकान में सुला दिया, खटमल के कारण नींद नहीं आई। सुबह हुआ, भोजन तैयार हुआ, हलवा दही बड़ा आदि बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई। पहले उसको सादा भोजन कराया, बढ़िया साग हलवा दही बड़ा आदि अलग रख दिया। जब सेठ भोजन करने आया तब उनको वह साग हलवा आदि दे दिया। उस आए हुए मित्र ने देख लिया, भोजन करने के बाहर आने पर कहा आपकी दृष्टि में मेरे लायक कोई काम हो तो यहां काम बताओ। तो उस मित्र ने कहा कि हमारे तो कोई काम है नहीं, बाजार में कोई पता कर लो। वह बाजार में गया, वहां पर एक गरीब आदमी मिल गया। उसने पूछा अरे भाई कब आए? कि कल आया हूं। कहां ठहरे हुए हो? वो मेरा मित्र है, अमुक अमुक सेठ वहां रुका हूं। भाई भाई वह भाई सेठ के यहां से उसके कपड़े वगैरह सामान ले आया और अपने घर ले गया और कहा अपने दोनों मिलकर कमाएंगे। स्त्री से कहा, वह सेवा धर्म को जानने वाली थी, उसने भोजन कराया। उसके पास कोई बढ़िया चीज तो थी नहीं, मिस्सी रोटी थी, चने का साग था, राबड़ी थी, सूखी रोटी डाल करके दोनों को थाली में दे दी। दोनों में कोई भेद नहीं था। बड़ा आनंद आया, बड़ी तृप्ति हुई। रात को सोने के लिए स्त्री की ओढ़नी की मछहरी बनाकर बोरा बिछा दिया गया। रात को कोई बाधा ही नहीं आई, दो दिन की नींद थी, आराम से खर्राटे पर नींद लेने लगा। दोपहर में सेठ से मिलने गया, कहा क्यों भाई कहीं काम की व्यवस्था बैठ गई? क्या तय किया? तो उसने कहा कि अमुक अमुक एक आदमी है ना, उसके यहाँ पर व्यवस्था बैठ गई, वो गरीब आदमी उसके यहाँ। तो फिर क्या तय हुआ तुम दोनों का आपस में? उसने कहा कि हमने अपने आप तय कर लिया, जो मिलेगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तब तो भाई कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो एक रुपया ही रोज का आएगा। उसने उत्तर दिया, तेरे यहां तो चारा नहीं नहीं था, उसके यहां भोजन अमृत है, उसको कभी नहीं भूलूंगा और तुमको भी कभी नहीं भूलूंगा। उसका बर्ताव अमृत के समान, तुम्हारा बर्ताव जहर के समान, तुम्हारे खान पान में समता, अरे खान पान में ही तो अमृत होता, समता ही तो अमृत होता है, खान पान में समता ही अमृत है, खान पान की विषमता है वो जहर है। खीर खांडता है सो खिला दो, भेदभाव रखो ये जहर है, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग माताओं बहनों को ये बताना चाहते हैं कि अपने घर वाले के लिए अच्छी अच्छी चीजें, दूसरे के लिए लापरवाही से और दो नंबर की चीजें देते हो, इससे आपके घर की शोभा खत्म होती है। हमने तीन तरह की रसोई एक घर में देखी, नौकरों के लिए एक ढंग की, अपने घर वालों के लिए एक ढंग की और घर के मालिक की और ढंग की। अरे एक घर में एक चूल्हे पर आप लोग भेदभाव पूर्वक भोजन बनाते हो, ये भोजन है, ये तो जहर है। अरे आपके पास ज्यादा नहीं है और चीज नहीं बना, खिचड़ी बनाओ, पर सबके लिए समान हो, अमृत के समान है। समता से दिया हुआ अन्न ही अमृत के समान होता है, बढ़िया से बढ़िया अन्न खिलाओ, वो बच जाए अमृत है। अपने घर में ये सब काम करना चाहिए। दो चार स्त्रियां यदि ऐसा करने लग जाए तो सब लोगों में एक हल्ला हो जाता है, सब लोगों पर अच्छा असर पड़ता है और वे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मारवाड़ देश में एक लड़की थी, उसके पिता माता ने सिखाया कि देखो भाई बेटा, यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सेवा ही सच्चा धन है, रुपया पैसा गहना ये मिथ्या धन है, झूठा धन है, इसे दे करके सच्चा धन खरीदना। जहां कहीं कोई कठिनाई की बात आए, बलिदान का काम पड़े, वहां सबसे आगे रहना, और जहां खाने पीने का काम पड़े, मौज मस्ती का काम पड़े, वहां सबसे पीछे रहना। ये बात अपनी बच्ची को कूट कूट करके भर दी। बच्ची का विवाह हुआ, वो ससुराल आई, वहां देखा तो अरे यहां तो रात दिन कलह होता है। वो सोचने लगी कि अरे राम, यहां मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मेरे पिता माता तो ऐसे नहीं लड़ते थे, भाई वगैरह नहीं लड़ते थे। रात में स्वप्न में एक भाव आया, तुमको यहां सेवा करके घर को बैकुंठ बनाना चाहिए, हमने तुमको इस घर में इसीलिए भेजा है कि तुम इसको बैकुंठ बनाओ, जिससे इस घर का काया पलट हो जाए, सबका जीवन पलट जाए। सुबह उठी, विचार आया कि ये मुझे स्वप्न कैसे आया, पर बहुत अच्छी बात कही है। उसके चार जेठानियां थी, सब पारी पारी से भोजन बनाती थी, वह एक एक के पास जाकर खुशामद करके कहने लगी, जी रसोई तो मैं ही बनाऊंगी, आप मुझे रसोई का काम दीजिए। कहा ठीक है। उन जेठानियों ने देखा कि बहुत अच्छा हुआ, अपना गैल छूटी। सास आई, अरे चारों की रसोई तू बनाएगी, रोज रोज तू बनाएगी। उसने कहा माताजी, इतने लोगों को भोजन बना करके खिलाना कितना पुण्य का काम है। ये तो साक्षात मुक्ति की अवस्था है। स्त्री के पास और इससे बढ़कर क्या भजन साधन हो सकता है। सबको भगवान का स्वरूप समझ करके भोजन कराना ये स्त्री का सबसे बड़ा भजन होता है। हमारे पिताजी ने यही शिक्षा दी है। ये तो मेरे पर जेठानियों ने बड़ी कृपा की है। अब आप बीच में हमारे मत पड़ो, आप बूढ़े हो, आप बैठे रहो, बाधा मत दो। सासू ने कहा अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद ससुर जी ने चार चार साड़ी लाकर दी। वह एक जेठानी के पास गई, कहने लगी जी मैं तो आपकी बहुत छोटी हूं। क्या बात, मैं बहुत छोटी हूं, मैं कोई भी आपको कुछ बात कहूं तो आप मना मत करना, मैं आपकी दासी हूं। मैंने कहा बोलो क्या बात है। ये साड़ी आई है, ये साड़ी आप रख लो। जेठानी ने कहा अरे तुम साड़ी मुझे देती हो, ससुर जी ने मुझे भी दिया है। उसने कहा कि वो दिया सो दिया है, मेरे पास साड़ी की जरूरत नहीं है, ये मेरी साड़ी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तो पीआर से 30 साड़ी लाई हूं, अब बताओ क्या करूंगी, पड़े पड़े कपड़े खराब हो जाएंगे। इस प्रकार सबकी खुशामत करके जो साड़ियां मिली थी वो एक एक को बांट दी और कह दिया कि आप किसी से मत कहना, आप किसी से मत कहना, आप किसी से मत कहना, आप किसी से मत कहना। जैसे तैसे सास को पता लग गया। सास ने कहा अरे बेटा तुमने सब साड़ियां बांट दी, क्यों बांटी। उसने कहा कि माता जी ये बड़ी गुप्त बात है, आप मुझसे मत पूछो। तो सासू अड़ गई, गुप्त बात है तब तो बताई बता, ये तो बताना ही पड़ेगा कि सासू जी मेरी गुप्त बात है। क्या नहीं बताओ कि मेरे पिताजी ने कहा कि जिस प्रकार तू सास जेठानी की सेवा करेगी वो सेवा तुम्हारे साथ जाएगी, ये चिथड़े तो यहीं रह जाएंगे। सासू जी ने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया बात कही, तो वही तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। कुछ दिन बाद ससुर ने गहने बनवा दिया। अब वो खुशामद करके सब गहने भी अपने जेठानियों को लुटवा दिए। सास ने पूछा कि क्यों अपने गहने दे दिए। तो उसने उत्तर दिया कि माताजी जी आज मैं मर जाऊं तो ये क्या काम आएगा, ये क्या काम आएगा, ये तो यहीं रह जाएंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि सब कुछ देकर भी सेवा करना, सास के ऊपर असर पड़ा। सब गहना कपड़ा लेकर अपनी बहू के पास गई, दे दिया। वह बहू शाम को रसोई के लिए जेठानियों के पास गई, पर अब सास के समझ में समझाने से जेठानियों ने शाम की रसोई नहीं दी, अपितु सुबह की रसोई थी वो भी वापस लेने, नहीं 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 हम ही बनाएंगे। बदल गया स्वभाव सबका। अब वो बिचारी उदास हो गई, क्योंकि उसके मन में सच्ची लगन थी। अब क्या करें, रसोई इन्होंने ले ली, सेवा का भाव क्या करूं। पर जिसको सेवा लेनी होती है, सेवा करनी होती है, वो कहीं से भी सेवा ढूंढ लेता है। जैसे व्यापारी आदमी को रुपया कमाना होता है, वो किसी भी काम से रुपया कमा सकता है। वो सोचती रही कि क्या काम करूं, तो देखा कि आटा है ये बाहर चक्की से पिसा हुआ आता है। अब उसने अपने घर में ही आटा पीसने का काम चालू कर दिया। दूसरी बहुओं को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी पीसना चालू कर दिया। नौकर देरी से आता था तो वो पानी निकालकर परिंडा तैयार रखती। ससुर ने पूछा अरे बात क्या है ये, आजकल सब घर में ठाट बाट लगता है, सब काम ठीक ठाक लगता है, बात क्या है। तो ससुर जी ने पूछ लिया कि बेटा तू सरदम काम करती रहती है, इतना काम कैसे करती है। उसने कहा पिताजी, मेरे पिताजी ने कहा था कि निकम्मा मत रहना, जो 4 बजे उठती है प्रभु स्मरण करने के बाद प्रभु का ही मंदिर समझ करके घर का काम काज करती है और आटा पीसती है, दूसरा काम करती है, उस पर भगवान बहुत मेहरबान होते हैं। सास ने पूछा कि तू आजकल क्या करती है बेटा। उसने कहा कि कुछ नहीं काम करती हूँ, आजकल निठल्ली रहती हूँ। तो ये जल कौन भरता है, ये आटा कौन पीसता है। वो चुप हो जाती है, वो कहना नहीं चाहती है कि मैं करती हूँ। तो सासू जी ने कहा तू बोलती क्यों नहीं है। तो वो कहने लगी कि मैं बोलती हूँ तो आप मेरी बड़ाई करते हो, आप मेरी बड़ाई नहीं करो तो कह दूं कि बोलो कि ये जल मैं भर देती हूँ और सब काम कर देती हूँ। क्यों, इससे मुक्ति मिलती है। रोटी तो आदमी 2 टाइम करता, भोजन करता है, और जल को तो कितनी बार पीता है। अपने हाथ से अपने ही घर में जो पानी पिया जाए वो साफ सुथरे बर्तनों में भर करके साफ सुथरे ढंग से रखा जाए, वो नौकर थोड़ी कर सकता है। सासू चुप हो गई। अब वो जो थोड़ा खाली समय बचता तो बर्तन मांजने लग गई। सास ने कहा रे बेटा बर्तन तो अपने यहां दैया आती वो मांजती है, तू क्यों मांजती है। बहू ने कहा कि बर्तन दिखने में कितने अच्छे दिखते हैं, बर्तन को मांज कर रखा जाए देखने वाले का चित्त प्रसन्न हो, और जहां बर्तन वगैरह खूब साफ मंजे रहते हैं वहां लक्ष्मी जी आती है, और जहां फूटे टीटे ठुकरे सूखले पड़े रहते हैं वहां से लक्ष्मी जी भग जाती है। तो मुझे मांजने दीजिए, हमें लक्ष्मी जी तो नहीं चाहिए पर मुक्ति तो चाहिए। क्या ऐसे क्या होता है इससे बर्तन मांजने से कि बर्तन मांजने से 1 महीने में मुक्ति हो जाती है। अब तो सब जेठानियां लूट मचाने लगी, कोई अपने पति की मांजे, कोई किसकी मांजे, कोई किसकी मांगे। तो सासू के मन में आया, सासू ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा पति बाद में, बेटा मेरा बचपन से इसको गोद में खिलाया है, बहुत बर्तन मांजे, कल की आई छोकरियां, मेरा बेटा है, मैं बर्तन मांजूंगी। अब कोई भी काम हो लड़ाई होने लगे, फिर घर के लोग इकट्ठे होते और लड़ाई मिटाते बैठ जाते। पूछते क्या हुआ कि भाई जब से छोटी बहू आई है तब से घर में लड़ाई बहुत होती है। तो सब पूछने लगे कि तू ऐसा क्यों करती है। कहा कि हमको माँ बाप ने सिखाया ही यही है कि शरीर तो एक दिन मर जाएगा, इसको तो लोग चिता में फूंक देंगे और गहना गांठा यही रह जाएगा। सबसे बढ़िया काम सेवा करके और अपनी कोई चीज वस्तु वो दे करके अपने को मुक्ति लेनी चाहिए। अब तो दुकान में भी यही झगड़ा होने लगा, वो भाई भाई आपस में लड़ने लगे, ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। अब लोग तमाशा देखने लगे, देवता लोग सराहने लगे कि देखो एक स्त्री आई, कैसा वातावरण बना दिया। ऐसी स्त्रियों को वास्तव में भगवान कहते हैं हमारे यहां चाहिए। ऐसी 2-4 स्त्रियां हो जाए देखो घर की क्या रौनक होती है, तमाशा ही और हो जाए। केवल भाव की तो बात है, एक थोड़ी समझ की तो बात है। ये मानव जीवन बहुत जन्मों के बाद मिला है, बड़ा दुर्लभ है। सबको भगवान की सेवा समझ करके सेवा करनी चाहिए। मैं सेवक हूं झूठा नहीं, सच्चे भाव से भाव रखनी चाहिए। झूठा तो वो है जो कहे तो सेवक लेकिन माने अंदर मन में माले कि नहीं मैं मालिक हूं, ऊपर से कहे हम तो सेवक हैं आपके और अंदर से वो मालिक पड़े का घमंड रखता होगा, कोई काम का नहीं। सच्चा सेवक बने, सबको भगवान समझ के सेवा करे, आकाश से भगवान प्रकट होकर यहां आ जाए, उनकी सेवा हमें मिल जाए तो कितना आनंद है। ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ भगवान विराजमान है, परिवार में जो विराजमान है, उनकी हम सेवा करने में संकोच करते हैं। अरे आकाश से प्रकट होवे भगवान और चाहे माँ बाप से प्रकट हुए ये भगवान, क्या अंतर है। नामदेव जी के लिए कुत्ते में भगवान आ गए, ध्रुव जी के लिए वन में भगवान आ गए, रंती देव के लिए चंडाल में भगवान प्रकट हो गए। क्या कोई खर्च लगता है? क्या कोई परिश्रम होता है? केवल श्रद्धा की कमी होती है, इस कारण से हम सब में भगवान देख नहीं पा रहे हैं। जब कोई घर में आ जाए तो मन में आफत सी लगती है कि कब जाएगा, बाबा इसकी रोटी बनाओ और इसके बिस्तर बिछाओ और इसका ये करो और वो करो, और आफत कौन लेवे। अरे एक दिन की आफत से आपके जन्म मरण की सब आफत मिटती है, कितना बड़ा उपकार होता है। जो रोकर सेवा करते हैं उसमें बहुत परिश्रम होता है, समय तो उतना ही लगता है, चीज भी उतनी लगती है, अंदर से रोते रहते हैं। और जो कह रहे नहीं नहीं आज तो भगवान की कोई बड़ी भारी कृपा हो गई, हमको मौका मिल गया, तो बड़ी खुशी होती है। और तीसरा भाव का नहीं, साक्षात भगवान ही आए हैं, तब तो आनंद ही आनंद आ जाए। कोई अतिथि जी आ जाए, उसे महात्मा समझकर हाथ जोड़कर उसका सत्कार करो, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। और विशेष भाव हो तो कहे आज हमारा बड़ा भाग्य है, अंदर ही अंदर समझे आज हमारा बड़ा भाग्य है, हमारे कल्याण के लिए आए हैं, तो महीनों में ही कल्याण हो जाए। नारायण आ गए, भगवान साक्षात नारायण ही आए, तो उसी क्षण कल्याण हो जाए। एक भाई नाम जप तप, एक भाई जप ध्यान तप अपने शत्रु के नाश के लिए करता है, बहुत नीचा भाव है, तामसी कर्म है। करता तो जब भगवान का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का तप करता है भगवान के लिए, परंतु शत्रु के नाश का उसके मन में भाव है कि इससे शत्रु का नाश हो, ये बड़ा तामसी कर्म है। एक भाई मान बढ़ाई पुत्र धन संपत्ति यश इसके उद्देश्य से श्रद्धा से भजन करता है, ये राजसी है, उससे भगवान नहीं मिलते, स्त्री पुत्र आदि मिल जाएंगे। एक भाई वही काम निष्काम भाव से करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक व्यापारी है, बाढ़ आ गई, वहां जाकर के वो लागत वस्तु से वस्तु बेचता है, रुपए के लिए व्यापार नहीं करता किंतु सेवा के लिए करता है। वो दिखने में तो व्यापार है परंतु वो भगवान का सबसे बड़ा भजन है। भाव श्रद्धा का हो जाने के बाद वो बहुत ऊंचा कर्म हो जाता है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। केवल जगत ही जगत में बुद्धि को दौड़ाते हो, क्या फायदा होगा? आगे लोग हमको मूर्ख बताएंगे। महापुरुष होते हैं वो अपने जीवन में अपने बुद्धि का बहुत बड़ा भारी लाभ उठा लेते हैं, किंतु मूर्ख लोग होते हैं वो यूं ही जिंदगी खराब कर लेते हैं। एक सज्जन के परिवार में तीन व्यक्ति थे, स्त्री पुत्र और वो स्वयं, तीन थे। शिवजी की तपस्या की, परंतु मूर्खता थी उस परिवार में, मूर्खता, भाव कोई ज्यादा ऊंचा नहीं था। शिवजी की तपस्या की, शिवजी आए तो पहले स्त्री से कहा कि बोलो भाई तुम्हारी कोई क्या इच्छा है, वरदान मांगो। तो स्त्री ने कहा कि महाराज मैं बहुत सुंदर स्त्री बन जाऊं। शिवजी ने कहा तथास्तु। तो वो बहुत सुंदर स्त्री बन गई। उसी समय एक राजा उधर से जा रहे थे, वो राजा ने उस स्त्री को देखा, उस स्त्री पर मोहित हो गया, अपने सिपाहियों से कहा कि ले जाओ इसको, हम इसके साथ विवाह करेंगे, ले चलो। बेचारे दूसरे लोग क्या बोलते राजा के सामने, राजा ले गया। उसका पति और पुत्र तपस्या कर रहे थे, शिवजी प्रसन्न हुए और उसके स्त्री के पति से कहा कि वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मेरी स्त्री है वो कुतिया हो जाए। तो वो राजा के वो पालकी में थी, वो कुतिया हो गई और कुतिया होके वही राजा के पालकी में बौं 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 भूखने लगी। राजा घबराया, अगर ये कुतिया कहां से, मैं तो स्त्री को लाया था, कुतिया कहां से आई। राजा को पता नहीं कि शंकर भगवान ने कोई वरदान दिया है, उसने उस कुतिया को वहां से पटक दिया। वो बिचारी गिर गई और भौं भौं करती भूखती रही। फिर वो शिव जी लड़के के पास गए और कहने लगे, बेटा तू वरदान मांग। उसने कहा, महाराज मेरी माँ जैसी थी वैसी प्रकट हो जाए। तो वो कुतिया से वापस थी जैसी थी। तीनों आदमी खाली लौट गए। अरे भगवान की भक्ति करी, शिव जी ने दर्शन दिए, क्यों तो सुंदरता मांगी, क्यों उसका कुतिया रूप मांगा और क्यों तुमने वापस गया। वही रहे, वहीं के वहीं आ गए, खाली खाली आ गए घर में। एक आदमी ने भक्ति की, शिवजी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, जो चाहो सो मिल जाएगा, पर तुम मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दूनी चीज मिलेगी। क्या ठीक है महाराज? कहा महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। कि मेरे घर के बाहर एक कुआ हो तो पड़ोसी के दो कुआ हो गया। कैसी मूर्खता है, दूसरे का अनिष्ट चाहते हैं। अरे दूसरे का अनिष्ट करने से खुद का अनिष्ट होता है। सबसे बढ़िया बात है कल्याण मांगो, आत्म कल्याण मांगो, छोटी चीज क्या मांगो। अरे मांगने ही बैठ गए फिर क्या बात है। देने वाले जब भगवान मिल गए, ऊंचे से ऊंचे देने वाले, तो उनसे ऊंची से ऊंची चीज मांगनी चाहिए। किसी करोड़पति सेठ के पास जाए और सेठ प्रसन्न होकर के कहे कि बोलो क्या चाहते हो, तो उसके पास जाएगा, हमको तो एक पैसा दे दो। सेठ का भी अपमान होता है। अरे कम से कम अपना आजीविका चले उतनी जमीन मांग लो, उतना कुछ कर लो, उतना धन मांगो, तब तो कुछ समझ में भी आए। एक पैसे से क्या होता है, इतना बड़ा सेठ है। ये सब बात भाव पर निर्भर करती है। भगवान की भक्ति करके जो मूर्ख रह जाते हैं, नाशवान वस्तु मांग करके खाली के खाली रह जाते हैं। भगवान से मांगो एक ही चीज, वो मांगो भगवान से ही, भगवान का ही प्रेम मांगो, बेड़ा पार है। हम तो देखो आपको बहुत मूल्यवान, बड़े रहस्य की, बड़े तत्व की, सिद्धांत की, आप सबको समझ में आ जाए वो बात बताते हैं, बेड़ा पार हो जाए उससे। वो बात क्या है कि भगवान भाव से मिलते हैं और एक मिनट में भाव बदल जाए तो एक मिनट में भगवान मिल जाए। ये जो हमको भगवान में देरी हो रही है उसमें हमारा कुभाव कारण है। यदि भगवान की बात पर विश्वास कर ले तो भगवान तो हमको मिले हुए हैं। वासुदेव सर्वम, ये बात समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। पारस घर में पड़ा है, कहीं से लाना नहीं पड़ा, हमको मालूम नहीं था, दूसरे भाई ने बता दिया, हमने विश्वास कर लिया, तो हम खूब धनी हो गए। ऐसे गीता हमको बोलती है, महात्मा बोलते हैं, तो उससे हमको भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने माया का पर्दा डाल रखा है। इसलिए भगवान आकर के हमको सीधा नहीं कहने वाले हैं, हमको ही वो माया का पर्दा हटाना है और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है।